ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महापतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायक कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै कदालयै कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय प्रियं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायिनो विरहकाकलयायिनः पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमहा। सप्रथम अपने नित्य आराध्य ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद्भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों की वंदना करते मैं कुछ आरंभ कर रहा हूँ। आदरणीय वैष्णव माताएं बहनें, मैं अभी रशिया से आ रहा हूँ। वैसे तो इसके पहले 10 दिन पहले ही मैं लौटा था, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और होते हुए हवाई अमेरिका के सभी बड़े बड़े शहरों में, वहाँ से होते हुए इंग्लैंड और हॉलैंड इत्यादि देशों में प्रचार करके लौटा था। किंतु गुरु पूर्णिमा थी, इसलिए मुझे लौट करके आना पड़ा था, इसलिए मैं अभी रशिया गया। वहाँ पर एक कम्युनिस्ट देश में, जो कि पहले कम्युनिस्ट था, वहाँ कोई धार्मिक प्रवृत्ति नहीं थी। चर्चों को भी गिरा दिए थे, ध्वंस कर दिया था, कोई भी भगवत विश्वासी वहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकता था। जब वहाँ पहुँचा तो एयरपोर्ट में ही सैकड़ों लोग कीर्तन करते हुए मिले भीतर में, और सभी लोग देख रहे हैं कि ये कौन है, आए हैं और क्या कर रहे हैं। और जहाँ गया, हमारी यहाँ पर क्लास दे रहे हैं, धर्मसभा हो रही है, उसमें देखा कि पहले दिन ही 600-700 आदमी वहाँ पर आए और 7 दिनों तक वहाँ पर भाषण सुने। इसके बाद में मैं मास्को शहर में आया, वहाँ पर हजारों लोग, यहाँ तो बड़ी मुश्किल से अभी 50-60 आदमी होंगे कि 100 होंगे, कैसे उनको खबर मिल गई और कैसे हजारों लोग सुनने के लिए आए। और एक दिन के भाषण में ही क्या जाने कैसे हुआ, हमने कहा कि मांस मछली छोड़ना होगा, तो उन्हें हम तैयार हैं, मैं कह रहे जेसस क्राइस्ट और कम्युनिज्म इत्यादि को भी छोड़ना होगा। लेलिन यहाँ आए, उन्होंने जार को हटा करके, वहाँ के बादशाह जार को हटाकर कहा कि हम लोगों को सुख और शांति देंगे, सबको बराबर कर देंगे। तो वो जब तक जीवित रहे उन्होंने प्रयास किया, किंतु कुछ बराबर नहीं कर सके। धनी धनी रहे, अमीर रहे और गरीब गरीब भी रहे, कुछ लोग जरूर धनी भी, बुद्धि का डिवाइड नहीं उन्होंने, वो नहीं कर सकते। सभी की बुद्धि एक समान कैसे बनाएंगे, ऊंचाई लंबाई मोटाई कभी कैसे बनाएंगे, धन भी कैसे बराबर कर सकेंगे, कुछ ना कर सके। इसके बाद में स्टालिन आए, स्टालिन ने भी बहुत प्रतिज्ञा की, किंतु सारा जीवन प्रयत्न करके भी वो भी ये दूर की खाई नहीं मिटा सके, किसी को भी नहीं सुखी बना सके। क्रुश्चे आए, इसके बाद में और लोग आए, अभी हैं, नए नए तरह के सब चीजें आती हैं, कोई भी देश को सुखी नहीं बना सका और न बना सकता, बराबर कैसे कर सकते हैं। इसलिए वो लोग दुखी हैं, बड़े दुखी, जैसे विश्व के और लोग हैं, के लोग भी जाते, किंतु मास्को को हमने देखा अद्भुत, इंग्लैंड और अमेरिका के बड़े बड़े शहरों से भी देखा, बड़े बड़े वहाँ पर बिल्डिंग हैं, ऐतिहासिक बिल्डिंग हैं, बहुत बहुत सुंदर चीज़ें हैं। खूबी ये कि बड़े सरल, सभी नहीं, अधिकांश जो जनरल पब्लिक है बड़े धार्मिक प्रवृत्ति की, हमने जो जो कहा उसको माना, गले में माला धारण किया, मांस मछली का त्याग किया, गाय का खाना बंद कर दिया, हमने कहा एकमात्र कृष्ण को ही ग्रहण करना होगा, कृष्ण जेसस क्राइस्ट, जो क्राइस्ट कौन है, ये कृष्ण शब्द से दक्षिण हमारे भारत में पूरी इत्यादि में उनको केस्ट कहते हैं या कृष्ण कहते हैं, कृष्ण से क्रिस्ट, कृष्ण से क्रिस्टस, और क्रिस्टस ही उनका कृष्ण से आया, कृष्ण की उपासना ही उनके पिता है ना जेसस के, तो ये पिता कौन है, उनका नाम रूप तो होगा ही, रूप तो होगा ही, ये कृष्ण का ही रूप है, असल में वो कृष्ण के ही उपासक हैं, किंतु गड़बड़ी से कुछ ही गड़बड़ हो गया, बातों को सुनकर के बड़े प्रभावित हुए। एक दिन के अंदर ही 70 आदमी लोगों ने हरिनाम दीक्षा ली, दूसरे दिन भी 70, और उसके बाद में 20-25 और, साथ ही साथ उनके हृदय में भगवत भक्ति का विचार आया। यहां होना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, कृष्ण के प्रति भक्ति होना, यहां एक तो सारे देवताओं का भजन होने का दिवाल, खान पान भी ऐसा है कि उसको छोड़ना बड़ा भारी मुश्किल है, एक निश्चयता नहीं है, हम कहेंगे सब देवताओं को छोड़ करके कृष्ण का भजन करो, बहुत ही कम आदमी है, दुर्लभ, दिल्ली में ये 50-60 ही आदमी नहीं है, एकांतिक भक्त बहुत बिरले हैं, ये भी एकांतिक भक्तों में से ही और लोग हैं, एकांतिक भवन का भजन कैसे होगा, जो श्रीमद् भागवत का अवलंबन करेगा वही कर सकता है, दूसरा नहीं कर सकता है। व्यास जी सब धर्मों का प्रवर्तन किया, वेदों का विभाग किया, पुराणों को उन्होंने प्रकाश किया, वेदांत की रचना की, सब कुछ महाभारत की रचना हुई, उसके अंदर में गीता भी आ गया, तभी प्रसन्न नहीं रहे, तब नारद जी की कृपा से कृष्ण ही स्वयं भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, यह समझा, और कृष्ण के भजन करने से सबका भजन हो जाता है, तब उनके समझ में आया, तब उन्होंने गोपियों की महिमा, ब्रजवासियों की महिमा का वर्णन किया, और कृष्ण ने उसमें बतलाया न पा रहे हम निर्वचन, मैं गोपियों के ऋण से मैं कभी ऋणी नहीं हो सकता, चाहे लाखों जन्म मुझे लेना पड़े, ये मेरे लिए संभव है, इसलिए श्रीमद् भागवत जो है वही प्रमाण है, उसके अनुसार में अपने जीवन को हमको बनाना है, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। मैं भी कुछ उपाख्यानों के द्वारा एक दो उपस्थित करके आप लोगों को समझाने की चेष्टा करूंगा, ऐसी तो नहीं है, आप लोगों ने सुना होगा उपनिषदों का एक उपाख्यान है, किसी समय में देवताओं और दानवों में युद्ध चल रहा है, देवता कौन है और दानव कौन है, गौर एक जो भगवान को मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं वो देवता है, जो ठीक इसके विपरीत भगवान पर विश्वास नहीं है, जो लोग ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो मत करो, वो लोग हैं दैत्य दानव, पहले एक दो, दो चार पांच दस बीस होते थे, आजकल कलयुग में अधिकांश लोग दैत्य दानव, क्योंकि खाते पीते मौज करते, तो ये इन्होंने सुना जो आत्मा तत्व को जान लेगा वो कभी नहीं मरेगा, वो अजर अमर हो जाएगा, वो एक रस है, उसका परिवर्तन नहीं होता, नित्य नवीन है और आनंदमय है। इस तत्व को जो जल जान लेगा वो पृथ्वी को पराभूत कर सकता है, पृथ्वी पर विजय प्राप्त कर सकता है। असुर ने सोचा कि इस तत्व को जान ले तो देवताओं को हम पराजित कर देंगे, और देवताओं ने भी सोचा कि इस तत्व को हम यदि जान लें तो हम असुरों को पराजित कर देंगे। भीतर का तात्पर्य समझा नहीं। इन लोगों ने, दोनों ने, देवताओं के राजा इंद्र और असुरों के उसमें विरोचन थे, दोनों लोगों ने निश्चित किया इस तत्व को जानने वाले ब्रह्मा जी हो सकते हैं, इसलिए उनके पास में जाकर के इस तत्व को हम जाने। ब्रह्मा जी के पास में ये दोनों गए कि हम लोग आत्म तत्व जानना चाहते, अजर अमर हो जाना चाहते, आनंदमय हो जाना चाहते। ठीक है, बहुत अच्छा, तुम लोग योग्य पात्र हो, जब आए हो तो 25 वर्ष तक हमारे यहाँ रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करो और हमारी सेवाएं जो है उसको करो, 25 वर्ष के बाद में तुमको कुछ उपदेश दे। 25 वर्ष रहे, सात्विक भाव से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, वहाँ की जो सेवाएं हैं सेवाएं करते रहे। 25 वर्ष के बाद में जब वो लोग आए दोनों, तो दोनों को आइए देखो, 25 वर्ष तक तुमने दाढ़ी और सिर का मुंडन नहीं कराया है, अब तुम लोग अपने स्वरूप को देखो आईने में और देखो, और इसके बाद में मुंडन करा करके सुंदर वेश बनाकर और उसे सजाकर अच्छे अच्छे कपड़े धारण करके हमारे साथ पास में आओ। जाकर के उन्होंने मुंडन कराया, भद्र वेश बनाया, सुंदर अलंकार धारण किया और उनके पास में पहुंचे। उन्होंने कहा जी देखो, यही आत्मा है, आत्मा शरीर ही आत्मा है, शरीर यदि सुख रहेगा तो तुम लोग सुखी रह सकते हो, इसको जानने से तुम लोग अमृत हो सकते हो। वही आत्मा तत्व अपरिवर्तनीय है, आनंदमय है, उसका कभी भी परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता, एक रस रहता है। विरोचन इस चीज को ग्रहण किया और लौट गया अपनी राजधानी में और इस शरीर को ही आत्मा मानकर इसको सुखी बनाने की चेष्टा में वह लग गया। क्या क्या उसने, इस आत्मा के अतिरिक्त और कुछ नहीं है शरीर के अतिरिक्त, ऋणं कृत्वा घृतं पिबे, ऋण करके भी घी खाओ, क्योंकि आयुर्वै घृतं, फिर से ही आयु होती है, उसे शरीर पुष्ट होता है, इसलिए मरने के बाद में कौन देखने आता है ये ऋण कौन लेता है देता है। भस्मीभूतस्य देहस्य किं पुनरागमः, उसका आगमन तो है नहीं, मर जाएगा शरीर तो, इसलिए यही शरीर सर्वस्व है, खाओ पियो मौज करो, इसी में सुखी रहो, जो आजकल की देन है। कलयुग में प्राय ऐसा ही होता है, यही प्रधान चीज है, बहुत कम लोग भक्त होते हैं। और उसने कहा कि यही शरीर ही आत्मा है, अजर है, अमर है, शाश्वत है, आनंदमय है, यही नास्तिक धर्म का उसने प्रचार किया, शरीर ही है आत्मा और कुछ अलग से आत्मा नहीं। इंद्र जी जब ब्रह्मा जी के पास से यह सुन करके लौटे तो कुछ आने के बाद में उनके अंदर में भावना हुई, भाई ये शरीर तो पहले दाढ़ी गोंप और ये सब कुछ गंदा था, अब हम लोगों ने इसको शेविंग कर दिया और इसका मंडन कर दिया और श्रृंगार किया, ये तो बड़ा सुंदर अब लग रहा है, तो इसका तो परिवर्तन है, और अभी कोई दुख आ जाएगा तो क्या होगा, इसमें कोई रोग हो गया तो, यदि हाथ पैर काटने पड़े तो, दुबला हो गया तो इसमें परिवर्तन भी है और इसमें आनंद तो है ही नहीं, क्षण क्षण में दुख और सुख की अनुभूति होती है, इसलिए ये तो एक रस आत्मा नहीं हो सकता, ये अपरिवर्तनीय नहीं है, जरूर कुछ बड़ी गुण बात है, बस ये शरीर आत्मा नहीं। बीच रास्ते से लौट आए, लौट करके बोले कि हमको कुछ शंका हो, मैं क्या शंका हो किसे लौट आए, हम कुछ ऐसे मालूम हुआ कि कुछ गूढ़ रहस्य इसमें है, आत्मा कैसे अजर अमर हो सकती है, शरीर और शरीर आत्मा कैसे हो सकती है, शरीर में देखते हैं कि बार बार इसमें रोज रोज परिवर्तन होता है, जन्म लिया, वर्धित हुआ, युवावस्था आई, फिर वृद्धावस्था आई, फिर मर गया, तो ये नित्य कहाँ है, और आनंद की बात, तो आनंद की तो परीक्षा ही इसमें नहीं है, इसलिए ये शरीर आत्मा अजर अमर नहीं हो सकता है, ये मेरे अंदर में भाव है। ठीक है ठीक है, तुम ठीक सोचा। अच्छा 25 वर्ष और रहो, ब्रह्मचर्य के साथ में रहो, सात्विक वस्तुओं को ग्रहण करना और इस प्रकार से रह करके तब फिर हमारे पास आए। 25 वर्ष के बाद में फिर हुआ है, ये देखो मैं गुण रूप से उपदेश देता हूं। इस शरीर के अंदर में ये शरीर आत्मा नहीं है, किंतु जो स्वप्न को देखता है और स्वप्न में आनंदित भी होता है, उसको शारीरिक क्लेश नहीं है, उस शरीर का परिवर्तन नहीं है, इसलिए वही आत्मा अजर अमर शाश्वत है। इसलिए उस स्वप्न पुरुष को देखो जो स्वप्न देखता देखने वाला है, यह शरीर स्वप्न नहीं देखता है, इसलिए उसको खोजो और तुम अजर अमर हो जाएगा और विश्व को तुम जय कर सकता है, तुमको कोई पराभूत नहीं कर सकता। चले ठीक, आधी रास्ता जाने के बाद मैं सोचा स्वप्न जो देखने वाला है वो तो अजर अमर हो नहीं सकता, एक रास्ता होगा नहीं, नाना प्रकार के स्वप्न देखता, वो देखता कि हमको कोई सिर काट दिया, भयभीत हो जाता है, और कभी देखता कि आकाश से मैं गिर रहा हूं, कभी कुछ देखता है, इसलिए ये आनंदमय भी नहीं है, उसमें दुख भी है। इसलिए स्वप्न देखने वाला दृष्टा जो पुरुष है वह कभी भी आत्मा नहीं हो सकता है, आनंदमय तो है नहीं। लौट करके फिर आए, गुरु जी आपने जो कहा वो बात सत्य हो सकती है किंतु मेरी समझ में नहीं आई, ये स्वप्न देखने वाला पुरुष ये कैसे आत्मा हो सकती है, इसमें तो दुख है सुख है, इसमें परिवर्तन है, इसमें आनंद है नहीं, तो फिर ये कैसे हो सकता है। ठीक है तुमने सोचा है ठीक है, 25 वर्ष और रहो, ब्रह्मचर्य के साथ में सेवा करो और तब फिर हमारे पास आओ। वैष्णव की सेवा करना, उनका संग करना और ब्रह्मचर्य रहना, ठीक 25 वर्ष के बाद में आए। देखो स्वप्न से भी अति जब गहरी निद्रा में जो सो जाता है तभी श्वास आता जाता है किंतु अनुभव नहीं होता, संसार का कोई सुख और दुख भी उसको स्पर्श नहीं करता, वो आनंदमय पुरुषात्मा है, वो एक रस है, उसको जान लेने से तुम भी अजर अमर हो जाओगे और विश्व को पराजित कर सकते हो, सुखी रह सकते हो। ठीक फिर लौटे, फिर विचार किया स्वप्न जो नहीं देता है, घोर निद्रा में जो चलता है तो भी उसका अस्तित्व रहता है, किंतु मैं हूं उस समय यह भी मालूम नहीं होता, तो जब मैं ही नहीं हूं, देखने वाला ही नहीं है, स्पर्श करने वाला है, उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, दुख की अनुभूति नहीं होती, ये बात तो ठीक है, किंतु वो आनंदमय पुरुष कैसे हो सकता है। और फिर जग जाते हैं तो फिर क्या होता है, फिर वही शरीर में भावना आ जाती है, इसलिए वो भी पुरुष नहीं हो सकता है। लौट करके आए, ब्रह्मा जी से कहा पंजे ठीक है अब तुम ठीक हुआ, अब 25 वर्ष और, 100 वर्ष पूरा हुआ ना, 100 वर्ष के बाद में और 25 वर्ष के बाद में यहां बुद्धि शुद्ध हो रही है, आत्मा भी उसकी कुछ शुद्ध हो रही है संग से, और ब्रह्मा जी तो हमारे परंपरा के गुरु हैं, उनकी सेवा करने से क्या होगा, ये तो शुद्धि तो जरूर होगी जी। 50 फिर और जब लौट करके आए 100वें वर्ष में, तुमने कहा ये देखो जो सुख दुख अनुभव करता है किंतु सुख दुख नहीं से ऊपर है, जो स्वप्न देखता है किंतु स्वप्न नहीं है, जो सुनता है किंतु कान नहीं है, कान के माध्यम से जो सुनता है, जो मस्तिष्क से मन से बुद्धि से करता तो कुछ है किंतु वो बुद्धि और इसे भी अतीत है, वो भगवान का नित्य दास है, वो भगवान का नित्य अंश है। ममई वांसो जीवलोके जीव भूत सनातन, वो सनातन है, वो उनका अंश है, एटर्नल सर्वेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड है वो। गीता भागवत तुलसी की रामायण में या वाल्मीकि रामायण में हमारे उपनिषदों में सर्वत्र इस बात की को कहा गया है, आत्मा अजर अमर है, किंतु कृष्ण विस्मृति के वजह से, कृष्ण को भूलने के वजह से यह संसार में देहाशक्ति में आकर के इसी को ही समझने लगा। भगवान से विच्युत होने के कारण नाना प्रकार के जीवनियों में दुख सुख में भटक रहा है, कोटि कोटि जन्मों से, एक जन्म से नहीं। आप लोग पहली बार संसार में नहीं आए हैं, पहली बार ही मनुष्य नहीं, कितनी बार हुए। शुद्ध वैष्णव भक्त धर्म में, भक्ति धर्म में आप लोग प्रवेश नहीं कर सके, इसलिए भगवान को नहीं जान सके। इसलिए जीवात्मा क्या है, भगवान का पार्ट एंड पार्सल है, उनका अंश है, किंतु भगवान नहीं है। शरीर से वो चलता फिरता ये सब, किंतु शरीर नहीं है। मन से विचार करता है, मन भी नहीं है, वो शुद्ध आत्मा। वो अभी इस कारागार में पड़ा हुआ है, यह संसार एक कारागार है। जिन्होंने इसको ही सत्य मान लिया वो सुखी नहीं रह सकते। इसलिए कलयुग में उसी भगवान ने जो जगत के लोगों का कल्याण करने के लिए नाम के रूप में अवतीर्ण हुए, सारी शक्तियां नाम में अर्पित कर दिया, उनकी कृपा भी सब कुछ नाम में अर्पित कर दिया। कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में प्रभु का दर्शन बड़ा कठिन है, किंतु नाम के प्रभाव से हो सकता है। इसलिए नाम को स्वयं कृष्ण समझना चाहिए, कृष्ण से अभिन्न है, उसकी सारी शक्तियां उसमें है, उसके द्वारा ही कलयुग में संभव पर है। और दूसरा कोई उपाय नहीं है जो कि हम अपने स्वरूप में आकर के भगवान की सेवा कर सके, जन्म मरण से अतीत हो सके। इसलिए बतलाया हरेर नाम, हरेर नाम, हरेर नामैव केवलम कलौ नास्तेव 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 गते। जो विद्वान है, जो मूर्ख है, जो मुसलमान है, जो हिंदू है, जो क्रिश्चियन है, ईसाई है, यहां तक कि पागल भी भगवान का नाम कर सकते हैं। बल्कि बुद्धिमान अधिक है, विद्वान है, उच्च कुल में आए हैं, उनके लिए जरा कठिन है भगवान का नाम, किंतु साधारण जो है उनके लिए कठिन नहीं। दिन में भी रात में भी चलते फिरते सब में इन भगवान का नाम कर सकते। आप लोग जानते होंगे याज्ञवल्क ऋषि को, वो ब्रह्मवेत्ता पुरुष थे, राजा जनक के दरबार में रहते थे, राजा जनक के एक तरह से गुरु थे। उनकी दो पत्नियां थीं, कात्यायनी और मैत्रेय, दोनों बड़ी भक्त थी, पति सेवक थी, पति प्रता थी। जब इनकी उम्र आधी हो गई, आधी से अधिक हो गई, चाहे 100 वर्ष समझ लीजिए आयु उस समय, तो वो 50 वर्ष के हो गए। यदि 10,000 वर्ष की आयु उस समय में होती या लाख वर्षों की, तो 50 वर्ष आयु हो गई। तो उन्होंने अपनी पत्नियों से कहा, तुम्हें बेटे और बेटियां हो गई, तुम लोगों को रहने के लिए हमने राजभवन हमने बनाए, लाखों गायों का दान तुम लोगों को ये मिला हुआ है, सोने के अलंकार तुम्हें, सब प्रकार से अब तुम आत्मनिर्भर है। और मैं भी अब बूढ़ा होने चला, इसलिए आप लोग हमें आदेश दें, हमें ये क्या आदेश ही दें कि मैं जाकर के कुछ एकांत स्थल में भगवान का स्मरण करूं। अभी तक मैंने एकाग्र रूप में संपूर्ण रूप से भगवत भजन नहीं किया, उनका चिंतन नहीं किया। उनमें कात्यायनी ने कहा, आप हमारे पति हैं, अब हम हमारे बच्चे हैं, काफी धन है, सब कुछ है, अब संसार भोग की कोई लालसा नहीं है, आप खुशी से जा सकते हैं और आप भगवान का भजन करें। मैत्रेयी ने कहा, आप जा सकते हैं, किंतु हमारे एक प्रश्न हमारा है, एक शंका हमारी है, उसको दूर करके जाइए। उन्होंने जो क्या है शंका, तो शंका यह है कि आपने हमें स्वर्ण धन दिया, बच्चे भी दिए, राजभवन भी दिया, कोई चीज की कमी नहीं रही, आपने सब कुछ दिया, ये बतलाइए कि इसके द्वारा हम सुखी हो सकते हैं जीवन में कि नहीं। सुनते ही चौंक पड़े और बोले, यथार्थ में तू भी हमारी धर्म पत्नी है, कोई भी इसे सुखी नहीं हो सकता है जो चीज हमने तुमको दिया, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हम सुखी इसको लेकर के रहें, आप एकांत में भजन करने क्यों जा रहे हैं, इसलिए संसार में इसे कोई सुखी नहीं हो सकता। आप बतलाइए कि हम कैसे सुखी हो सकते हैं, हमारी आत्मा कैसे सुप्रसन्न हो सकती है। जय आत्मा संप्रसिद्ध, कैसे आत्मा सुखी हो सकती है? शरीर के सुखी होने से, मन के सुखी होने से आत्मा सुखी नहीं रह सकती है। कोई योग आत्मा के सुखी रहने से शरीर मन सब कुछ सुखी रह सकता है। जस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि हो सकती है। श्रीमद भागवत में ही ऐसा ही प्रथम स्कंद के प्रथम या द्वितीय या तृतीय अध्याय में ये सब चीजें आई। बिना भगवत भजन किए हुए सवई पुनसांग परो धर्मो जतो भक्ति रथो कजे अहे तुक्का प्रतिहता जात्मा संप्रसिद्ध। आत्मा कभी प्रसन्न होगी? जब वो भगवान की सेवा में नियुक्त होगी। यदि सेवा में नियुक्त नहीं भी होती, उनका स्मरण और कीर्तन करने से, श्रवण करने से ये सहज ही धीरे 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 हो सकता है। वासुदेवे भगवती भक्ति जो या प्रयोजित जनयत आशु वैराग्यम ज्ञानंच जद अहेतुकम। भक्ति आने से साथ ही साथ में उसकी क्रियाएं भी आरंभ हो जाती, विशेष विज्ञान प्रेम सहित भक्ति उसमें उपस्थित होती है। और ज्ञान जितने तत्व हैं, कृष्ण तत्व, माया तत्व, जीव तत्व, भक्ति तत्व, भक्ति रस, जो कुछ है ये सभी उसको ज्ञान मिल जाता है। साथ ही साथ में होगा, एक साथ में। इसके लिए बहुत से श्रीमद भागवत में ये सब दिया है। यथा तरो नून निशीन त्रिप्यंति ततस्कंद भूजो कुशाका प्राणोपहार यथेन्द्रियाणम तथा सर्वाहरण अच्छुत। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने से पत्तियां हरी भरी हो जाती हैं, उसमें फल लगते हैं, उसकी डालियां भी मोटी होती है, पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है केवल जड़ में देने से। और यदि उसके फूल और पत्तियों और फलों में जड़ पानी दें तो क्या होगा? वो पौधा सड़ जाएगा। गुलाब का पौधा उसके फूल में दो, उसके पत्तियों में दो, जड़ में ना दो तो क्या होगा? कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाएगा। जैसे आहार मुख में दे रहे हैं तो इंद्रियां सबल रहेंगी, यदि आंख में वही आहार दो, पेट में वही चीर करके दो तो क्या होगा? मरोगे। उसी प्रकार से सारे विश्व की जड़ कौन है? ये कृष्ण है। उनकी सेवा करने से, उनका नाम कीर्तन करने से आत्मा सुखी होगी, सभी लोग सुखी हो सकते हैं, क्योंकि सबकी ये जड़ है। और कृष्ण का भजन नहीं किया गया, उनकी विभूतियों का भजन किया। विभूति माने देवता वर्ग इत्यादि, ब्रह्मा हैं, शंकर हैं, गणेश हैं, दुर्गा हैं, सूर्य हैं, तो क्या होगा? उनकी विभूति हैं। जपन न देवता जनते सत्यान्विता ते अभी मामे व कंते व जगत, किंतु अविध पूर्वक, वो अविध पूर्वक है। देवताओं की उपासना भी भगवान की उपासना है, किंतु उपासना तो कृष्ण ग्रहण कर लेते हैं क्योंकि वो सब भोक्ता है, किंतु वो उसका जो उपासक है वो देवताओं को देवलोक में ही जाएगा और वहीं से फिर भ्रष्ट होगा। ते तंग भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशाल जानति देवव्रता देवान पितृ न जानति पितृव्रता भूतानि जानति भूतेज्या जानति मत जादिन अभिमान। देवताओं का भजन करने वाला उसकी उपासना तो भगवान के पास में चली आएगी। जैसे पर्वत से वर्षा हो रही है तो पर्वत का पानी कहाँ आएगा? किंतु पर्वत समुद्र नहीं हो जाएगा, पर्वत समुद्र में नहीं पहुंचेगा। उसी प्रकार से जो देवताओं का जो भजन करते हैं उनकी उपासना तो भगवान जैसे तैसे वहां पर पहुंच जाएगी, क्योंकि उनके अतिरिक्त तो दूसरा कोई है ही नहीं। किंतु वो व्यक्ति जो है वो देवलोक में जाकर के फिर वहां से गिर जाएगा, क्योंकि वो नश्वर लोक है। किंतु भगवान का क्या है? जद गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम। किंतु भगवान और भगवान का धाम यह नश्वर नहीं है। किसी प्रकार से भी उनका नाम करने से अनर्थ युक्त अवस्था में भी, देह में आत्मविमान होने पर भी यदि नाम करो तो उसका फल कुछ न कुछ होगा। कैसे होगा? आग है नहीं जानते हो, किंतु आग में हाथ डालो तो क्या होगा? क्यों जलाएगी? एक बच्चा है आग को नहीं जानता तो भी जलाए, हाथ देगा तो जलेगा। ऐसे ही समझो भगवान का नाम बड़ा प्रभावशाली क्रिया होगी, किंतु कुछ अनर्थों के कारण डायरेक्ट जो कृपा भगवान की होती है मुक्ति होकर के कृष्ण के चरणों में प्रेम होकर के उनकी नित्य सेवा ये नहीं होगी। ऐसे साधारण रूप में वो समृद्ध होगा, अच्छे घरों में जन्म ले सकता है, धन जन परिवार उसके होंगे, किंतु शुद्ध भक्ति जो है जो गोलोक वृंदावन में ले जाने वाली है ये नहीं मिलेगी। इसके लिए तो रसिक वैष्णवों के पास में उनके सत्संग में रहकर उनकी सेवा करते हैं। इसलिए संक्षेप में हमने कहा कलयुग में यह काम सही रूप में चलते फिरते उठते बैठते छींकते समय में भी यदि हरिनाम कर दिया निकल गया तो भी कल्याण ही कल्याण है। इसलिए नाम के ऊपर में विश्वास रखेंगे और नाम को करेंगे, धीरे धीरे अनर्थ भी दूर हो जाएंगे, हृदय में प्रेमा भक्ति आएगी और ये संसार से सदा से मुक्त होकर के उनकी सेवा करेगा और दूसरा कोई उपाय नहीं। इसीलिए अंत में उन्होंने कहा है श्रीमद् भागवत के अंत में क्या है, सर्व नाम संकीर्तनम जस सर्व पापो प्रणाशनम, संकीर्तनम जस जिनका संकीर्तन विश्व को पवित्र करता है, अनर्थों को दूर करता है, दुखों को भी हरण कर लेता है, ऐसे जो हरि जो परम है परम हरि उनको मैं प्रणाम करता हूं, यह कहकर के श्रीमद् भागवत। इसे संक्षेप में हमने थोड़ा सा बताया और बहुत अधिक रात हो जाएगी इसलिए मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अभी कीर्तन होगा, कीर्तन के बाद में होगा फिर हम लोग दिल्ली में कहीं दूसरी जगह और फिर धीरे धीरे आप लोग भगवान में खूब श्रद्धा रखिए, भगवान के भक्ति बिना कभी भी कल्याण नहीं हो सकता है। शंकर जी हनुमान जी गणेश जी सूर्य जी उन्हीं की उपासना करते हैं, सवितुर वरेण्यम वो सूर्य के भी वरेण्य है। गौर प्रमानंदे चतुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे monkeys and all other, if they have no bhakti, if they are not realized, in the way to realize who am I, who is Krishna, what is our divinity, what is your constitutional position, then they are like animals, two-legged. And in them, if they know something about God, but they are karmi, offering something to Krishna and something for them, in them there are very rare who believe in Krishna, but not doing one-pointed bhakti to Krishna. And in one-pointed there are so many desires also. So pure bhakti is very rare in this world. Among them, Kotiswapi Mahamune, Narayan Parayana, those who are Narayan Parayana, even they are worshipping Narayan, they are fortunate. But among them, there are very rare Krishna Bhakta. In rare Krishna Bhakta, Braj Bhakta are very rare, rare of rare. And among them, Sakha, and in Sakha, Varsalya mood, and in that mood, Gopi mood is very rare in this world, in whole universe. So he told Chaitanya Mahaprabhu to Rupa Goswami that this is very real. This is our aim and object of our life. Oh, this is not the first time and last time that you are human. It may be in past you have been human being more than this, God, demigods you have been, but never satisfied and never happy. And if you are losing this time, this golden chance, then for endless time you are losing. Mercifully, Krishna is without any causeless mercy. Very causeless mercy. And he has given this human body. human face or shape. This is very rare. But by the mercy of Krishna you have received it. Don't lose this so golden chance.
Krishna is a servant here. You are the это очень редкая возможность получить такую милость. Поэтому не теряйте этот золотой шанс.
Mahaprabhu told, Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavanaji Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bi. But a very rare person, by the mercy of Krishna, they have become human. And in this human life, anyhow, by the mercy of Krishna and Guru, they can have the seed of Bhakti Lata, creeper of Bhakti. So you should read and you should read the book. Where is your book?
Chaitanya Mahaprabhu, Bhagavata, Vaitiriva, chapter 19, text 151, translation purport by Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. According to their karma, all living entities...
You should know one thing, that some propaganda do propaganda, that he is, Narayan Maharaj is not in the line of Swamiji. But I think they are not in line. Myself, very strongly I am in the line. I always follow his explanation, perfect and everything. More than 60 years I am following. When there was no school. Even I am following, totally following. I try to follow him totally, as he has taught me. Go on.
То, что написано в его книгах. И я делаю это уже около 60 лет. Я думаю, что те, кто говорят, сами не находятся в линии преемственности от Шрилы Прабхупады.
I remember one shlok. Krishna bhakti rasa bhavita mati kriyatam kutopi yadi labhyate tatra laulyam api millam ekalam janma koti. This is the definition of Krishna consciousness. Really. And he will never fall, no chance of falling, if they follow this slope. I want that we should follow and never fall down and always developing our Krishna consciousness. What is the meaning of that slope? Krishna bhakti rasa bhavita mati.
Это слово, которое дается определение сознания Кришны. Я думаю, что тот, кто следует правильно этому определению, сознание Кришны никогда не упадет.
If anyone is following bhakti like this, he is pure Krishna conscious, otherwise not.
Только тот, кто следует такому виду бхакти,
now, in his purport was he is telling.
According to their karma, all living entities are wandering throughout the entire
universe. Bona fide Guru.
By the mercy of both Krishna and the spiritual master, such a person receives the seed of the creeper of devotional service.
This is a translation of the verse. Prabhupada is very loved. I mean something.
Commentary of Srila Prabhupada. Соответственно, своей кармой все живые существа блуждают через всю Вселенную. Некоторые из них возвышаются до высших планетных систем, а некоторые нисходят на низшие планетные системы. Из многих миллионов блуждающих живых существ одно может быть очень удачливым и получить возможность общаться с истинным духовным учителем по милости Кришны. По милости Кришны и духовного учителя такой человек обретает семя лиян и преданного служения.
This subject is very deep and like a philosophy. You should hear very carefully. Don't sleep, don't cut, yawning, or sit straight, not like these old persons. Oh, be like a straight sitting.
Не будьте сомневы,
yes.
Не сидите,
обхватив
колени, как старики, сидите с
выпрямленной спиной. Гаур Премананде! Итай Гаур Премананде! Итай Гаур
Премананде! He comes in contact with a bona fide spiritual master by Krishna's mercy. How one can become this fortunate can be seen in the life of Srila Narada Muni. In his previous life, he was born of a maidservant. Although he was not born in a prestigious position, his mother was fortunately engaged in rendering service to Vaishnavas. When these Vaishnavas were resting during Chaturmasya period, the boy Narada took the opportunity to engage in their service. Taking compassion upon the boy, the Vaishnavas offered him the remnants of their food. By serving them and obeying their orders, the boy became the object of sympathy for the Vaishnavas. And by the Vaishnavas' unknown mercy, he gradually became a pure devotee. In the next life, he was Narada Muni, the most exalted of Vaishnavas, and the most important guru and acharya of Vaishnavas. Following in the footsteps of Narada Muni, this Krishna conscious movement is rendering service to humanity by giving everyone a chance to come in contact with Krishna. If one is fortunate, he becomes intimately related with this movement. Then by the grace of Krishna, one's life becomes successful. Everyone has dormant Krishna bhakti, love for Krishna. And in the association of good devotees, that love is revealed. As stated in Chaitanya Charitamrita, Madhya Lila 22.107, Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunai Shravanadi Shuddha Chite Karye Udai. Dormant devotional service to Krishna is within everyone. Simply by associating with devotees, hearing their good instructions, and chanting Hare Krishna mantra, dormant love for Krishna is awakened. In this way, one acquires the seed of devotional service. Guru Krishna Prasadi Pai Bhakti Lata Vij.
Only essence should be told, not reading all. Mali haya se bij kare aropan, samana kirtana jale kare sechan.
When a person receives the seed of devotional service, he should take care of it by becoming a gardener and sowing the seed in his heart. If he waters the seed gradually by the process of shravan and kirtan, hearing and chanting, the seed will begin to sprout.
Когда человек получает семя преданного служения, он должен заботиться о нем, став садовником и сажая семя в сердце. Если он поливает сердце, это семя, то постепенно в процессе шравана и киртана сердце, то есть семя начинает вырастать.
Guru, bona fide guru, will give the seed of bhakti kripa and tell the devotee that you should be gardener. You should put in earth, you should plenty of water, what is needed, you should give it. What is this? What is the seed? Guru will tell. Desire to serve Krishna is the seed of bhakti lata.
Gurudev
дает
ученику семя преданного служения и говорит, посади его в землю и поливай. Что это за семя? Это желание служить Кришне, бхакти лата вид.
By this, if any devotee puts this desire in his heart, and hearing Harikatha daily, serving bona fide Guru and bona fide Vaishnavas, this seed will sprout. Then a strong faith for the words of epics, word for Gurus, and word for Krishna will come. It is bound to come.
послание Кришны из шастры придет в его сердце.
So we should be very careful for this. We should judge where my bhakti is sprouted or not. There are some symptoms. And what the symptoms are? More louder.
In Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, our Srila Rupa Goswami Pad has very cautiously, mercifully described the symptoms which manifest in the heart of a devotee who is actually developing in his Krishna consciousness genuinely.
Sri Bhakti Rasamrita Sindhu, наш Srila Rupa Goswami Pad, милостиво описал признаки преданного, который проявляется, когда в его сердце расцветает бхакти-лата бидж.
By these symptoms, we can understand whether genuine Shuddha Bhakti is manifesting in the heart or not.
И судя по этим признакам, можно судить, действительно ли истинная Shuddha Bhakti проявляется в сердце или нет.
Кшантир абьярта калаттвам вирактир мана шуньята аша банда сумутканте нама гана садаручи Asaktistat gunakyane, pratishtat visate stale, ityadam bhavasyo jata bhav ankure jane.
Very short.
Here, Srila Rupa Goswami Pad is saying that the manifestation of Shuddha Bhakti in the heart has nine symptoms.
Здесь в этом стихе Кшантира Вьярта Калатан Бхакти Манашунита Рупа Госвами говорит, что проявление Шуда Бхакти можно судить по девяти признакам.
First of all, Кшантир. Kshantir means that the devotee, he becomes very peaceful and undisturbed in the midst of even great dangers and calamities.
Первое кшантир означает, что преданный всегда остается умиротворенным и безмятежным, даже посреди страшных бедствий и беспокойств.
Abhyaktakalatvam means he is very, very careful not to waste even a single moment of his time. He wants to always be absorbed in hearing, chanting, remembering and service of Haridwar and Vaishnavas.
Abhyaktakalatvam. Каждое мгновение своей жизни он не теряет пустое, постоянно занят служением Харигуру и Вайшнавам.
Virakti. If this devotional service is coming, then he will automatically be detached from the world. He cannot be attracted to any of the allurements of the material energy.
Вирактия. Если такого рода преданное служение приходит в сердце, он автоматически становится отречен. Его не соблазняют никакие объекты этой материальной природы.
Мана шуньята. This means that from the core of his heart, he genuinely feels, oh, I am quite worthless and insignificant. And thus he is able to offer respect to all living entities.
Мана шуньята. Из глубины своего сердца он чувствует, о, я совершенно незначителен и беспомощен, и поэтому он выражает свое почтение всем живым существам.
The next symptom is called Ashabandha. His heart is bound by a very, very strong and unbreakable desire to serve the lotus feet of Sri Sri Radha Krishna Jugal.
И следующий признак Ашабандха. Его сердце наполнено непреодолимым сильным желанием служить лотосным стопам Sri Sri Radha Krishna.
And Sumutkante. Sumutkante means that he is completely overwhelmed with a great eagerness and impatience, always thinking, where is Krishna? Where is Srimati Radhika? Hey Radhe, Vajadevike, Chalalite, Hey Nanda Suno Kuta. When will I meet them? When will I have the opportunity to serve them and please them?
И самотканте означает, что его сердце наполнено страстным стремлением к Кришне. Он всегда думает, где Кришна, где Шримати Радхика, Хе Раде, Ваджадевике, Чалалите, Хей Нанда Суда Кута. Когда я встречу ее, где я могу найти их?
Нама Гана Садаручи. Every time he chants Nam, there's always a very deep, flavorful taste in the chanting.
Нама Гана Садаручи. Всякий раз, когда он вспоминает Нам, его сердце пробуждается глубокий вкус к святому имени.
Asaktistat Gunakyane. That devotee is very attached to hearing and speaking the descriptions of Krishna's name, form, qualities and pastimes.
Асактистат Кунакьяне, такой преданный, очень привязан к слушанию и воспеванию имени, формы, качества Кришны.
Притистат Васатей Скале. And also, that devotee
He has a very great yearning and hankering to always live in Vrindavan Dham, in the places where Krishna has performed his pastimes, Seva Kunj, Nidhuvam, Bhangsipat, Jirasamir, Nandagan, Varasana, Terkadamba, like this. He's very attached to all of these places, especially Shavakund and Radhakund.
He preaches that in such a style. Такой преданный очень сильно привязан к таким святым, ко всем святым местам во Врадже, связанным с играми Кришны в Вриндаване, таким местам, как Теркадамба, Нидуван, Нандаган, особенно Шьямакан и Радукан.
So when these symptoms begin to manifest in the personality of the devotee, this is the sign that the Bhaktilata Beach is sprouting.
Если эти признаки проявляются в сердце преданного, это признак того, что семя преданного служения Бхактилата Бич прорастает.
But you should also know there is some process that it will come to this point. Before this, the first symptom of sprouting bhakti is that, he will require some water. And from where this water will come? From a realized guru or realized siksha guru. Then he will search a siksha guru and diksha guru. And duly in process he will have diksha. And then after diksha, he will obey his master and follow the process of real bhakti, anyabhilashita sunyam, jnana karma dhyana pratam anukullen krishna anusilanam. And thus gradually here all unearth unwanted thing will go, offenses will go. And gradually he will realize his cheto darpan, marjanam. He will realize something. And then a test will come, then asakti will come, and then these symptoms will come at the stage of haw. So bhakti is now grazing. So upajiya bade lata brahmanda vedija. And then this bhakti fire goes. Read it. If you want to be a pure devotee, you'll have to follow all these things. There is no question. It has been clearly told. So you should try to follow. This is the duty of devotees, to put in his heart this bhakti seed and to search water and to saturate it, and to fence from wild animals like, and that is offenses to Vaishnava, nam aparad, Vaishnava aparad. You will have to do. But Krishna will be mercifully giving, inspiring you to do like this. So pray to Krishna and Vaishnava and Guru for this.
Не может быть и речи, что кто-то достигнет совершенства, не следуя этому принципу. Нужно в первую очередь искать это семя и найти его, потом искать воду и поливать этой водой семя, потом отнести это семя в загороди, чтобы не пустить свирепых хищников, таких как слоны или вепри, которые могут поранить деревца. Что это значит?
So many devotees come to me, and they ask me, what to do? How to develop Krishna bhakti? How to give up anarth? What to do? Why they don't listen all these things? If they are hearing very attentively, no question. You should try to follow this process. Very soon you will develop. You are hiding something. You are hiding what? Very powerful poison in your pockets. And you are thinking that this is like nectar. And this poison will destroy your whole bhakti. To whom you are dependent, that, this will save me, but this will ruin you. So try to follow fully these things. Be dependent on the mercy of Krishna and Guru. And follow what he is giving instruction. This is the easy, very easy process. Method and process for developing. person knowing all these things, you don't want to obey the process given by Gurudev, you want to obey the uncontrolled your mind, then what Guru can do? He cannot do. He will cheat you. Oh, very good, go on. You can take this powerful poison and you should die. What he can do? He could not help him then. Those who want to obey their uncontrolled mind, not to obey Guru and Vaishnava, they will have to lose everything. Their bhakti will be stagnant and their root will be uprooted and there will be no bhakti. Only some pocket will be fulfilled by money and other position.
Если вы полностью предаетесь Гуру и Вайшнавам, то вы очень быстро развиваете вкус к святому имени, и ваши бхакти стремительно растет. Но если вы этого не делаете, если вы позволяете лишь своему необузданному уму управлять вашей жизнью, то тогда что может поделать Гуру? Вы прячете от него свое сердце, вы не отдаете ему и себя. Тогда он может просто поощрять вас, скажет, да, молодец, пей этот яд, пей до дна, пей весь бокал. И терять свою духовную жизнь. Что он может поделать? Если вы не отдаете себя ему, он не может никак вам помочь. Тогда гуру говорит, ты можешь делать все, что хочешь, будь счастлив в этой жизни, но бхакти вы никогда не обретете.
Then, упадья баре лота брахманд феди джай, бирджа лок феди парбхем джай. What is the meaning? You can do.
Upadhyaya Parilata Brahmanda Vedijaya. So when the gardener, that means devotee, will notice the seed with Savan Kirtan Jap, that means he will have to hear from bona fide Guru and Vaishnavas. Gradually his bhakti will increase and unwanted desire and offense will go away. Then it will come out from the planetary system, there means all kind of desire in this world will go away.
Yes.
Upadhyaya Parilata Brahmanda Vedijaya. After that, this 14th planetary system, there is Viraja. Then this Kripa will cross this Viraja and will arrive in the Brahmanda. That means
Brahmalok
Jaya. That means
desire of mukti will also go away.
The desire of salvation will go away forever.
Then a desire will come to serve
Narayan.
But even for one fronted Vaishnava, hearing from Guru, all these desires will also go away. And then he will go where? Tabe jai, tadupari, gulu. And then this will go to even to serve Jagannath Balde Subhadra and even Dwarkadhis Krishna, husband of so many queens, even this will go. And then it will come to Braja. Now you should read.
As one waters the Bhaktilata beach, the seed sprouts and the creeper gradually increases to the point where it penetrates the walls of the universe and goes beyond the Viraja river, between the spiritual world and the material world. It attains Brahmalok, the Brahman effulgence, and penetrating through that stratum, it reaches the spiritual sky and the spiritual planet, Golok Vrindavan. Being situated in one's heart, and being watered by Sravan Kirtan, the Bhakti Kripa grows more and more. In this way, it attains the shelter of the desire tree of the lotus feet of Krishna, who is eternally situated in the planet known as Goloka Vrindavan, in the topmost region of the spiritual sky.
Very good. Then, Sri Krishna Charana Kalpe Brikshe Kare Arohan यहाँ विस्तारित हया फले प्रेम फल यहाँ मालिशे श्रवण कीर्तन आदि जल यदि वैष्णव अपराध उठे हाथी माता उपाड़ व छिंडे तार सुख जाए पाता ताते माली जत्न करी करे आवरण अपराध हस्त जिसे न है उद्गम
Kripa greatly expands in Golok Vrindavan planet, and there it produces the fruit of love for Krishna. Although remaining in the material world, the gardener regularly sprinkles the Kripa with the water of hearing and chanting. If the devotee commits an offense at the feet of a Vaishnava while cultivating the Kripa of devotional service in the material world, his offense is compared to a mad elephant that uproots the Kripa and breaks it. In this way, the leaves of the Kripa are dried up. The gardener must defend the Kripa by fencing it all around so that the powerful elephant of offenses may not enter.
Oh, in hearing Hari Katha, sleeping is offense. So, if all are waking and hearing, then they're all sins, offenses. Oh, waiting in sky, and those who are sleeping, in them they will go. Also, be careful.
Я должен вам сказать одну важную вещь. Это очень важно вам узнать. Секрет преданного служения. Дело в том, что спать во время харикатхи – это великое оскорбление. И когда преданные сидят и слушают харикатху, всех оскорблений, анархии и грехи выходят из их сердец и витают в воздухе. И как только кто-то погружается в сон, все они кучей падают именно в его сердце. Поэтому будьте очень внимательны, не засыпайте, а то грехи всех остальных преданных пойдут в ваше сердце.
Then you have...
Здесь всего три стиха, которые в Читане Чайтанте Шрилы Прабхупады. Девица очень быстро растет и достигает планеты Голока Вриндавы. И там оно рождает плод любви к Кришне. Хотя садовник остается в материальном мире, постепенно поливая водой слушания и воспевания. Но если преданный совершает оскорбление стоп вайшнава, взращивает деревце преданного служения в материальном мире, его оскорбление сравнивается с оскорблением с безумным слоном, который вырывает деревце и ломает его. Таким образом, листья деревца высыхают. Поэтому садовник должен защищать дерево, деревце, огораживая его вокруг изгородью, чтобы могучий слон оскорбления не вошел туда.
Then here, one thing. Jadi Vaishnava Parad Uthe Hathi Mata, Upade Va Chinde Tar Sukh Jaya Pata. What is the meaning, Shyamrani?
While one's creeper of devotional service is growing, one should be very careful to create a fence around that creeper, so the mad elephant of offenses to Vaishnava will not come in his garden. If it comes, it tramples the creeper and completely destroys it. That fence that's recommended by Chaitanya Mahaprabhu around that creeper is the association of pure devotees.
Здесь говорится, что преданный, защищая свое деревце, должен оградить его большой стеной, чтобы помешать безумному слону Вайшнава Апарадхи растоптать его. И Ачарьи, объясняя смысл этого стиха, говорят, что это изгородь, это стена, защищающая деревце преданного служения. Это саду-санга, общество Вайшнава.
Oh, you should not criticize any Vaishnava. Never.
Вы не должны критиковать Вайшнава.
Don't beat, don't neglect, don't abuse any Vaishnava.